ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्ण हरे कृष्ण नहीं सुना, हरे कृष्ण। प्रसाद के लिए अभी समय है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। वो कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। किसके लिए कठिन है? साधारण सड़क पे चलने वाले व्यक्ति के लिए तो कठिन है ही, लेकिन जो विद्वान है, जो आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए भी कठिन है। विपश्चितः यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, मतलब एक विद्वान के लिए भी इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, जो इंद्रियां हैं वो क्या करती हैं? मन को हरण करके ले जाती हैं। आंख कुछ सुंदर वस्तु देखता है और आंखें कहती हैं मन से, चलो वहां पे चलो। हम भगवान का नाम जाप करने को प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंखें कहीं और जाती हैं। वहां सामने कुछ रसगुल्ला पड़ा है तो आंखें वहां जाती हैं, तो आंखें मन को वहां खींच लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण से ध्यान हटकर रसगुल्ले की ओर चला जाता है। हरन्ति प्रसभं मनः, हरण कर लेता है मन को। उसी प्रकार से हम भागवत या गीता का प्रवचन सुन रहे हैं और उधर बाहर से कुछ और आवाज आता है तो कान मन को वहां ले जाते हैं। हरन्ति प्रसभं मनः। इस प्रकार से हमारे सारे इंद्रियां मन को भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए? मन की शक्ति से इंद्रियों को कृष्ण की ओर खींच लेना चाहिए, ताकि मन भगवान पे केंद्रित हो जाए। इसके लिए बुद्धि को बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। बुद्धि जब शक्तिशाली होगा तो मन को वश में कर लेगा, और मन जब शक्तिशाली होगा तो इंद्रियों को वश में कर लेगा। और अगर बुद्धि श्री कृष्ण के सेवा में लगी हुई है तो उस समय क्या होता है? मन इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में लग जाती है। इसके लिए एक दृष्टांत दिया जाता है जो आपने कई बार सुना होगा। कौन सा दृष्टांत है वो? रथ का। शरीर रथ के समान है और रथ के ऊपर सवार जो पैसेंजर है वो कौन है? आत्मा। और सारथी कौन है? बुद्धि। और लगाम क्या है? मन। और घोड़े क्या है? पांच इंद्रियां। तो जब मन मजबूत रहता है, जब बुद्धि मन को अच्छी तरह से वश में कर लेती है, अर्थात सारथी जब अच्छी तरह से लगाम को टाइट पकड़ लेता है और सही दिशा में उधर उधर ले जाता है, तो घोड़े भी सही दिशा में आगे चलते हैं। अगर सारथी ढीला रहा तो लगाम भी ढीला रहेगा, लगाम ढीला रहा तो घोड़े भी ढीले रहेंगे, और घोड़े ढीले रहे तो रथ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। रथ इधर का उधर, उधर का इधर चले जाएगा। एक घोड़ा इधर भाग रहा है, दूसरा घोड़ा उधर भाग रहा है, तीसरा घोड़ा और कहीं भाग रहा है, चौथा घोड़ा खड़ा होना चाहता है, तो ऐसे होगा। उसी प्रकार से हमारे पांचों इंद्रियां हमको अलग अलग जगह खींच कर ले जा रही हैं, और इन पांचों में प्रतियोगिता चल रही है कि इनमें से कौन मन को हरण करके ले जा सकता है। आंखें सोच रही हैं, और कान प्रयास कर रहा है, नाक प्रयास कर रहा है, हर एक हमारे जो इंद्रिय है वो मन को कृष्ण से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम बार बार सत्संग में आते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं, गीता भागवत के वाणी का श्रवण करते हैं, तो बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है। बुद्धि परिअवतिष्ठते, तो बुद्धि जब स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो उस समय मन और इंद्रियां वश में आ जाती हैं। हर समय हमारा प्रत्येक इंद्रिय जो है हमें नाश की ओर ले जाता है। प्रभुपाद इसके बारे में सुंदर दृष्टांत दिया करते थे कि कैसे हर एक इंद्रिय हमें नुकसान की ओर, हमारे अंत की ओर ले जाता है। जहां तक आंखों का सवाल है, वो दृष्टांत दिया करते थे ऐसे कीड़ों का जो उड़ते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन वो रात को ही जीते हैं, 2-3 घंटे रात को जीते हैं, उनकी जीवन की अवधि केवल उतनी होती है। और उनका मृत्यु, उनकी मृत्यु कैसे होती है, वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, विशेष करके जहां आग जल रहा है तो उस आग से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उनके आंखें उनके मन को हरण कर लेती हैं, और मन कहता है वहां जाओ, कितना आकर्षक है ये आग, और आग में प्रवेश कर लेते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें उनको नाश की ओर ले जाते हैं, आंखों को आकर्षित लगता है, इसलिए वहां कीड़ा चले जाता है। ये आंख की बात हुई। और जिह्वा की बात, मछली कैसे पकड़ी जाती है पानी में? एक डंडा रहता है, डंडे के नीचे एक रस्सी रहती है, रस्सी के नीचे एक हुक रहता है, हुक के ऊपर कौन रहता है, क्या रहता है? कीड़ा। अब मच्छी वो कीड़े को देख लेती है, कितना स्वादिष्ट भोजन, तो जानती है कि ये खाने से खतरा है, लेकिन कीड़ा इतना स्वादिष्ट लगता है कि अपने आप को रोक नहीं पाती है, तो मुंह दबा लेती है कीड़े के ऊपर, और क्या हो जाता है, मच्छी वाला उसको ऊपर ले लेता है। तो अपने जिह्वा के वेग को न रोकने की वजह से उसका नाश हो जाता है। तो ये हो गए आंखें की बातें और जिह्वा की बात। अब कान की बात, मृग को कैसे पकड़ते हैं मालूम है? हिरण को बांसुरी से, जो शिकारी होता है वो मधुर बांसुरी बजाता है, की तरह नहीं लेकिन फिर भी बांसुरी बजाता है, और बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर होती है कि उसको बहुत अच्छा लगता है हिरण को, और कहां भी हो जंगल में हिरण उस ध्वनि की ओर चले जाता है, भागते 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 उसकी ओर आता है, और जब सामने आ जाता है तो शिकारी क्या करता है, तीर उठाता है और हिरण खत्म। इस प्रकार से कान जो है मन को हरण कर लेते हैं और हिरण की मृत्यु हो जाती है। और इंद्रिय हमारा, त्वचा हमारी, चमड़ी, हाथी को कैसे पकड़ते हैं मालूम है? हाँ, एक हथनी को, हाथिन को ट्रेनिंग देते हैं कि तुम उधर अच्छी तरह से खड़े हो जाओ। जैसे विज्ञापन में देखते हैं ना, किसी हीरो को, हीरोइन को पोज में लगाते हैं ताकि कुछ ऐसे हाथ करके ऐसे हंसी में ऐसे वैसे खड़े रहते हैं, सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार से वो हाथिन को ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस प्रकार से हाथी को आकर्षित करना है, और उस हाथिन के सामने एक गड्ढा रहता है और गड्ढे के ऊपर घास लगाया हुआ होता है ताकि गड्ढे को दिखाई ना दे, पड़ा दिखाई ना पड़े। और जब हाथी देखता है कि हाथिन वहां है, बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर हाथी है, तो उसकी ओर भागता है क्योंकि स्पर्श करना चाहता है। और भागते 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 क्या होता है, हाथिन वहां कहती है आओ, और ये भागता है और सीधा गड्ढे में गिर जाता है, और फिर शिकारी हाथी को पकड़ लेता है। तो ये हो गई त्वचा या चमड़े की बात। और फिर कौन सा रहा, नाक की बात। नाक के लिए कौन सा उदाहरण है, भौरा ठीक है, और एक हाँ भौरा जो होता है वो स्वाद के लिए भी आता है। भौरा भौरा जो होता है कमल पुष्प के पास या ऐसे गुलाब के पास जाता है, वो अमृत का पान भी करना चाहता है फूल का, तो जाता है घूम घूम के और वो फूल के अंदर बस जाता है। जैसे ही अंदर बसता है तो फूल अपने पंखुड़ियां बंद कर देते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। इस प्रकार से फूल भी अपना पोषण पा लेता है तो अपने नाक की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से कस्तूरी मृग हिमालय में रहता है और उसके शरीर से ही एक विचित्र वस्तु निकलता है जो बहुत ही सुगंधित होता है और इस वस्तु से मार्केट में लोग सेंट बनाते हैं, सेंट परफ्यूम जो बाहर लोग लगाते हैं ना, थपा थप लगा के जाते हैं शादी वादी में जाते हैं सर, उनको देखने के पहले उनको सूंघ सकते हैं, ऐसे दूर से इतना पावरफुल शक्तिशाली वो सेंट लगा के जाते हैं लोग। तो ये कस्तूरी मृग से आता है। तो कस्तूरी मृग इस सुगंध को सूंघता है और इसे इतना मोहित हो जाता है, प्राय उसको नशा चढ़ जाता है। लेकिन वो पशु समझ नहीं पाता है कि ये जो सुगंध है उसके शरीर से ही आ रहा है और इधर उधर भागता फिरता है कि कहां से आ रहा है ये सुगंध। पागल जैसा हो जाता है, जंगल भर में इधर उधर भागते रहता है और आखिर भाग भाग कर इतना थक जाता है कि थकान के मारे गिर के मर जाता है। तो नाक नसीके के सुगंध पाने के लिए हम जाते हैं तो क्या होता है, मृत्यु की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियां जो हैं हमें मृत्यु की ओर, नाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को कृष्ण की ओर केंद्रित करें तो क्या होगा, फिर हम अमर शाश्वत जीवन की ओर बढ़ेंगे, मृत्यु की ओर नहीं। इसे भक्ति कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि जब हमारे इंद्रियों को हम भगवान श्री कृष्ण जो कि इंद्रियों के मालिक हैं उनकी सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है, सारे उपाधियों से हम मुक्त हो जाते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम और तत्परत्वेन निर्मलम, सारे हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, निर्मल पवित्र हो जाती हैं और ऐसे सेवा को भक्ति कहते हैं। तो हमारे आंखों को किस कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना चाहिए, भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करके। और हमारे कानों का उपयोग कैसे करना चाहिए, भगवान के श्रवण बारे में श्रवण कीर्तन करने से। हमारे नसिकों का नाक का उपयोग कैसे करना चाहिए भगवान की सेवा में, जो भी अर्पण किए हुए फूल हैं, पत्ते हैं, धूप है उसको सूंघना चाहिए। जिह्वा को कैसे उपयोग करना चाहिए, ये बहुत आसान है, नाम कीर्तन करने में और प्रसाद सेवन करने में। और क्या रह गया, हमारे शरीर त्वचा का कैसे उपयोग करना चाहिए, भक्तों को आलिंगन करके। तो इस प्रकार से हमारे पांचों इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में लगाकर कृष्ण इनका हमारा मन हरण कर लेंगे। जब हम भक्ति में नहीं रहते हैं तो इंद्रिय के विषय जो हैं बाहर के सुंदर रूप, मधुर ध्वनि, कोई सुगंध इत्यादि, ये चीजें मन को हरण कर लेते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा करने लगते हैं तो धीरे धीरे इंद्रियों के विषय हमारे मन को हरण करने के बजाय हमारा मन किस चीज से हरण हो जाता है, कृष्ण के द्वारा। कृष्ण हमारा मन हरण कर लेते हैं। इसलिए हरि नाम का शब्द क्या होता है, सर्व अमंगल हरे, जो सारे अमंगल चीजों को हमारे हृदय से हरण कर लेते हैं। और प्रेम दिया मन हरे, और हमारा मन हरण कर लेते हैं प्रेम से, प्रेम का प्रदान, प्रेम को प्रदान कर देते हैं हमारे हृदय में। इसलिए इनका नाम है हरि। जो हमारा मन हरण कर लेने वाले हैं वो है हरि। तो इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में अगर सारी इंद्रियों को लगाएंगे तो कृष्ण हमारा मन हमारी इंद्रियां हरण कर लेंगे। हरण तो होना ही है, अपहरण हमारी इंद्रियों का होना ही है। चाहे संसार के इंद्रियों के विषय हमारे मन को अपहरण करें या कृष्ण करें, यह चयन हमको करना है। कृष्ण अगर हमारा मन हरण कर लेते हैं तो उसमें आनंद ही आनंद होता है। अगर संसार के विषय हमारे मन को हरण कर लेते हैं तो क्या होता है, दुख ही दुख होता है। इसलिए हमारे आंखों को बहुत अच्छी तरह से कृष्ण सेवा में लगाकर कृष्ण के सौंदर्य को देखना चाहिए। जब हम कृष्ण के सौंदर्य को समझ पाएंगे, कृष्ण के सौंदर्य को देखेंगे तो संसार के सौंदर्य को भूल जाएंगे। इस वक्त हम संसार के सौंदर्य से बहुत आकर्षित होते हैं। सारा संसार ये सौंदर्य के सिद्धांत के ऊपर चल रहा है। सभी लोग अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति। लेकिन जितना हम कृष्ण को सुंदर बनाते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने की इच्छा उस हद तक खत्म हो जाएगी। एक कहानी है जो श्रील प्रभुपाद बताया करते थे, शायद आप में से कई भक्तों ने सुनी होगी। एक बार एक राजपुत्र था, अपने घोड़े पे सवार होकर इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते एक बार उसे अचानक उसने एक बहुत सुंदर नव युवती को देखा और उसके प्रति आकर्षण हृदय में जागृत हो गया और सोचने लगा कि मुझे इस कन्या से विवाह करना है। तो उस कन्या के पास में गया और कहने लगा कि मैं राजपुत्र हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अब ये जो नव युवती थी वो साधु प्रवृत्ति की थी और बिल्कुल भगवान की सेवा ही करना चाहती थी, भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती थी। और जब उसने देखा कि ये जो राजपुत्र है ये मेरे विवाह करना चाहता है, तो उसने सोचा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये राजपुत्र तो इंद्र तृप्ति का जीवन जीता है, मुझे तो इंद्र तृप्ति नहीं करना है, मुझे भगवान की सेवा करते रहनी है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ये राजपुत्र है, कुछ भी कर सकता है, काफी नुकसान भी कर सकता है आके। तो नवयुवती बड़ी बुद्धिमान थी, तो उसने सोचा कि कुछ बड़े अकलमंदी से काम लेना चाहिए। तो उसने राजपुत्र से कहा कि ठीक है, आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे पास में एक हफ्ते बाद में आना, फिर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उस समय राजपुत्र सोचने लगा कि बहुत अच्छा, सफलता की प्राप्ति हो गई। अभी वो चला गया और एक हफ्ते के बाद आया। अभी इस एक हफ्ते के दौरान उस महिला ने ऐसे औषध लिए जिनसे उनके शरीर से सब कुछ बाहर निकल गया और बिल्कुल एक हफ्ते में इतने दुबले पतले हो गए, बिल्कुल सारा शरीर की ताकत, शरीर की ताकत सब कुछ खत्म हो गई, कुछ भी शरीर में नहीं रहा। और जब वो राजपुत्र आया वापस एक हफ्ते के बाद में, तो उसी जगह में आया लेकिन किसी सुंदर नवयुवती को नहीं देखा। एक महिला वहां पे थी और उसके पास जाके पूछा कि यहां पे एक सुंदर नवयुवती रहा करती थी, वो कहां है मालूम है? तो उसने बोला वो मैं ही हूं। अरे तुम हो? वो तो महिला कितनी सुंदर थी और तुम तो देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा, क्या हुआ है? तो नवयुवती ने कहा मैं ही वही हूं, जरा गौर से देखो। तो उसने गौर से देखा तो देखा वाकई वही है। तो फिर उसने पूछा आश्चर्यचकित होकर कि अरे तुम्हारा सौंदर्य कहां गया? तो नवयुवती बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा मेरा सौंदर्य देखना चाहते हो? तो उसने जाओ मेरे साथ और एक मटके के पास ले गए। मटके में दवाई लेने से उस महिला ने क्या किया था, सारे शरीर के पदार्थ अंदर थे उसके, उल्टी वगैरह सब किया हुआ था। और उसको जाकर वहां ले गए और देखो मेरा सौंदर्य उसके अंदर है। तो राजपुत्र को समझ में नहीं आया, अरे ये मटके के अंदर सौंदर्य क्या बोल रही है। फिर भी जाके देखा, और जाके देखा तो तुरंत बैक जंप किया। बैक जंप जानते हैं ना, तुरंत तीन कदम पीछे उड़ गए। अरे ये सब क्या कर रहे हो, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हो? बोला नहीं, मजाक नहीं है। देखो एक हफ्ते पहले तुमको लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन अब एक हफ्ते बाद तुम्हें लग रहा है कि मेरा सौंदर्य खत्म हो गया। तो कहां गया, अंतर क्या है उसमें? अंतर केवल तुम्हें सुंदर लग रही थी, अब ये चीजें निकल आई तो मैं सुंदर नहीं लग रही हूं, इसका मतलब है कि ये मेरे सौंदर्य का कारण है। तो उस समय राजपुत्र को समझ में आया कि ये महिला हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। उनको प्रणाम किया और कहा कि आपकी भक्ति आपके साथ रहने दीजिए, हम चले। तो इस प्रकार से ये संसार का जो सौंदर्य है ये क्या है? ये शरीर का सौंदर्य कौन सा सौंदर्य है? ये तो शरीर है, जड़ वस्तु है, बिल्कुल सड़ जाता है। हमारा सौंदर्य जो है कितने समय तक हम इसको बना पाएंगे, रख पाएंगे? ज्यादा समय तक इसको टिक नहीं पाएगा, ये थोड़े दिन तक रहेगा, और जब भी युवा अवस्था है थोड़े दिन रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, इदं शरीरं शतसंधि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणामपेशलं किमौषधिं पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। राजा कुलशेखर बताते हैं कि अरे ये शरीर कितने बेकार की वस्तु है। इदं शरीरं, ये शरीर जो है शतसंधि जर्जरं, हमारी जो संधियां हैं इधर के घुटनों के सब जगह थोड़े उम्र बढ़ते ही दर्द करने लगते हैं, उठने बैठने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है। आपके आप में से जिन लोगों की उम्र हुई है आप जानते हैं कि संधियों में कितना दर्द होता है, उठने बैठने में घुटनों में कितना दर्द होता है, ये शरीर है। तो राजा कुलशेखर बताते हैं, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम, ये शरीर का पतन होना निश्चित है। कोई संशय है इसके अंदर कि शरीर का पतन होगा? कोई संदेह नहीं, सबकी मृत्यु होगी, सबके शरीर का नाश होगा। परिणाम पेशलम, ये शरीर का सौंदर्य क्या है, कितने समय तक रहेगा? चंद मिनटों तक, चंद घंटों तक, चंद सालों तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और जब नव और युव अवस्था भी रहती है तो फिर भी ये सुंदर कौन सा सुंदर है, सौंदर्य है ये? आप किसी भी सुंदर व्यक्ति के शरीर काट के देखिए, अंदर क्या दिखेगा आपको? गुलाब, कमल और ये सब दिखेगा, सब गंदगी दिखेगी आपको शरीर के अंदर। जिसको भी ब्यूटी क्वीन मिस्टर यूनिवर्स लाइए, देखिए शरीर काट के देखिए, क्या है शरीर के अंदर? कुछ नहीं है, ये शरीर के अंदर कोई सौंदर्य नहीं है। फिर भी हम ये शरीर के सौंदर्य से इतना आकर्षित हो जाते हैं, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। तो हमें ये सब सोचना चाहिए, हमें इसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में ये क्या है ये शरीर। इसलिए ये शरीर को, शरीर के बारे में ज्यादा ख्याल न रखते हुए केवल इस शरीर को, सारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और जितना ज्यादा हम श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखते हैं उतना ज्यादा हम संसार के सौंदर्य से निरासक्त हो जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का सौंदर्य जो है ये कोई साधारण सौंदर्य नहीं है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, उनका शरीर दिव्य है, चिन्मय शरीर है। ये शारीरिक सौंदर्य भौतिक सौंदर्य की तरह नहीं है, श्री कृष्ण को कभी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ता है, श्री कृष्ण को कभी एक वो टेलकम पाउडर नहीं लगाना पड़ता है, श्री कृष्ण को कुछ लगाना नहीं पड़ता है। हालांकि माता यशोदा ये सब लगाती हैं उनके ऊपर, आंखों में अंजन लगाते हैं और उनको नाना प्रकार के गहने लगाती हैं, लेकिन ये सब करने से गहने ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। कृष्ण सुंदर ज्यादा नहीं होते हैं, गहने ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना अद्भुत है, इतना अच्छा है कि जो व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित हो जाता है अन्य सारे चीजें भूल जाता है। इसलिए वृंदावन के एक निवासी ब्रजवासी वो केवल श्री कृष्ण का दर्शन करते रहते थे, उनको और कोई भी चीज मालूम नहीं थी। अगर कृष्ण को नहीं देखते तो बड़े उदास हो जाते, कृष्ण को देखते तो बस ऐसा कि देखते रहते देखते रहते। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली में 7 दिन और 7 रात लगातार धारण किया तो उस समय ब्रजवासीगण क्या कर रहे थे? हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हम 10 मिनट इधर उधर बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, क्या करेंगे इधर उधर, हम थोड़ा निराश हो जाते, क्या करना चाहिए अभी। लेकिन ब्रजवासीगण 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े रहे। उनका टाइम पास कैसे हुआ, क्या कर रहे थे वो? शतरंज खेल रहे थे, फिर क्या खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? केवल भगवान के मुखारविंद की ओर उनके आंखें थीं। जैसे चकोर पक्षी होता है, चकोर पक्षी क्या करता है, केवल मुंह खोल के चांद की ओर देखता रहता है और चांद से अपने आंखों को हिलाता नहीं है। उसी प्रकार से सारे ब्रजवासी जो हैं, केवल उनका उनके सारे उनके आंखें कृष्ण के मुखारविंद पर स्थित थीं, एक सेकंड इधर उधर भी नहीं जाते थे। 7 दिन 7 रात कृष्ण के मुखारविंद को देखकर उनको भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा, नींद नहीं आई, थकावट नहीं आई, कुछ कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 24 घंटे 7 दिन 7 रात उनके नेत्र केवल श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद के ऊपर केंद्रित थे। हम कितना समय भगवान का दर्शन कर सकते हैं? हम खड़े रहते हैं भगवान के सामने और फिर मन कहीं और चले जाता है, 2 मिनट के बाद फिर और कहीं देखने की इच्छा हो जाती है। क्योंकि हमारा अभी तक ये संसार के सौंदर्य से आसक्ति है, इसलिए कृष्ण का सौंदर्य हमें आकर्षित नहीं कर रहा है। ये कैसे संभव होता है कि श्री कृष्ण के प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे? केवल श्री कृष्ण की वजह से। कृष्ण की माया शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि बद्ध जीव उनके सौंदर्य को समझ नहीं सकते हैं। देखिए भगवान की माया शक्ति कितनी अद्भुत है, कितनी शक्तिशाली है कि सर्व आकर्षक श्री कृष्ण के सौंदर्य को न समझने वाले जीव ऐसे भी ये संसार में हैं। लेकिन ब्रजवासी ऐसे नहीं है, 24 घंटे हमेशा भगवान का वो दर्शन करते रहते थे और एक क्षण भी अगर उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया तो बहुत उदास हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोक है जिसमें एक गोपी दूसरे गोपी को कहती है, गोपियां जो हैं वो कृष्ण के बारे में चर्चा हुआ करती थी तो वो सोते नहीं थे, वो इधर उधर देखते नहीं थे। जैसे मंदिर में हम प्रवचन सुनते हैं तो बीच बीच में सोते रहते हैं, तो वैसे गोपियां इतने आकर्षित थे श्री कृष्ण के प्रति, उनको निद्रा की बात ही नहीं थी, नींद के बारे में सोचते ही नहीं थे वो लोग। तो एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है, अटति यद् भवान अहनिकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वाम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखम् चते जड़ उदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम्। तो एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है, कृष्ण को बोल रहे हैं गोपी, अटति यद् भवान कि आप अहनी काननम, अटति मतलब आप जाते हैं, अहनी दिन में कहां जाते हैं, काननम वन में गायों को चराने के लिए, जब दिन के समय आप गायों को चराने के लिए वन में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। अपश्यताम मतलब आपको नहीं देखते हैं, पश्यताम मतलब देखना, अपश्यताम मतलब नहीं देखना। तो जब आप जंगल में चले जाते हैं और हम आपको नहीं देखते हैं, त्वाम अपश्यताम, तो क्या होता है? त्रुटिर युगायतम, एक त्रुटि, त्रुटि मतलब एक क्षण का भी अंश। तखे बंधु संगे स्थिरंग, एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है, कृष्ण का वर्णन कर रही है और बोलती है, स्मेरम स्मेरम भंगी त्रय परिचिताम। हल्का सा हंसी कृष्ण के मुखारविंद पे है। भंगी त्रय परिचिताम, उनका दिव्य शरीर तीन जगह में बका हुआ है। कौन से जगह में कृष्ण का शरीर बांका हुआ है आप देखिए, इसलिए उनका नाम बांके बिहारी होता है। बांके बिहारी, एक किधर है? गले में, दूसरा कमर में, तीसरा घुटनों में, इधर इसको क्या घुटना कहते हैं ना, घुटनों में। तो तीन जगह में बके हुए हैं इसलिए बांके बिहारी। देखिए ऐसे गोकुलानंद खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, इसलिए त्रिभंग मुरारी कहते हैं या बांके बिहारी। तो गोपी बोलती है, फिर बजाते हैं लेकिन उस तरफ देख रहे हैं, सीधा नहीं, थोड़ा इस तरफ ऐसे देखते हैं। तो वर्णन कर रहे हैं, वंशी न्यस्ता धर किशलयाम, उनके होठों में क्या लगा हुआ, उन्होंने बांसुरी, और बांसुरी बजा रहे हैं, और उनका मुखारविंद उज्ज्वलाम चंद्रकेण, चांद के समान उज्ज्वल है, बिल्कुल उज्ज्वल हो गया है। गोविंदाख्याम हरितनुमितः, और उनका नाम है गोविंद। जिस व्यक्ति का वर्णन हम कर रहे हैं उसका नाम है गोविंद। हरितनुम, उसका शरीर जो है बहुत सुंदर है, सच दिव्य है शरीर। और वो कहां खड़े हैं बांसुरी बजाते हुए? केशी तीर्थ उपकंठे, वो केशी घाट में खड़े हैं, वृंदावन में, वंशी वट में, जमुना जी के तट पर खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो एक गोपी चेतावनी दे रही है, वार्निंग दे रही है दूसरे को, क्या बोल रही है? देखो वहां वंशी वट में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि एक बार उस गोविंद को देख लिया तो क्या होगा, तुम्हारे मित्रों सगे संबंधियों से हमेशा के लिए तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाएगा। एक बार इस गोविंद के प्रति आकर्षण हो गया तो सारे इनके तुम्हारे बंधु मित्र संग जो हैं सबसे दूर हो जाएगा, उनको टाटा बोलना चाहिए, बाय बाय, उनके लिए अभी कोई जगह नहीं हृदय में, अभी केवल गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए जगह है। इसलिए आप सबको भी वार्निंग दिया जाता है, आपको अगर आपके सगी संबंधी प्रिय हैं तो इस मंदिर में मत आइए, कृष्ण भक्ति मत कीजिए, सीरियसली मत लीजिए। हाँ आइए, ऐसे ही हम मजाक कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाहर जाके बोलें कि ये मंदिर में अजीब बात बोलते हैं, पहले निमंत्रण देते हैं फिर बोलते हैं कि मत आना। लेकिन कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण हमारा मन ऐसे हरण कर लेते हैं, कैसे? उनके सौंदर्य से। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि हमारा सारा जो आकर्षण अन्य जगह पे होता है उनसे खींच कर उनके प्रति, उनके चरण कमलों में लगा देते हैं मन मन को। ये है कृष्ण भक्ति, बहुत अच्छा है, सबको करना चाहिए। और ऐसे आकर्षण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो लोग कृष्ण के प्रति ऐसे आकर्षित हैं या आकर्षित होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संग में हमें आना चाहिए, बार बार भक्तों के संग में आना चाहिए और कृष्ण से प्रार्थना करते करनी चाहिए कि कृपा करके ये संसार के सौंदर्य से, चमक धमक से हमारे मन को हटाइए और आपके सौंदर्य में, आपके चरण कमलों में हमारे मन को स्थित कर दीजिए। हमें यही एक चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में। तो अभी जब प्रवचन खत्म हो जाएगा, कीर्तन खत्म हो जाएगा, आप दर्शन करने आएंगे तो ये प्रार्थना कीजिए कि हमारे संसार से आसक्ति बिल्कुल खत्म हो जाए और केवल आपके प्रति हमारा आकर्षण रहे और हमारे नेत्र केवल आपके सौंदर्य को देखें और किसी भी चीज को नहीं देखें। और यही हमारे आंखों की परिपूर्णता है, यही हमारी जीवन की परिपूर्णता है। बस इतना जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, उसे संसार में या संसार के बाहर भी कोई भी चीज प्राप्त करने लायक नहीं रही। और ऐसे आकर्षण के लिए हमें चाहिए कि हम हमेशा भगवान के नाम का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप में से कितने लोग ऐसे ही कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आप सब छोड़ने के लिए तैयार हैं? कृष्ण मन को हरण कर लेंगे तो तैयार हैं? अच्छी बात है, बहुत साहस है आप में। ऐसे ही उत्साह और साहस से हमें आगे भक्ति मार्ग में चलना चाहिए तो हमें इस परम आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, किसी को कोई लड़ाई झगड़ा करना है, क्या बोल रहे हैं, किसी को कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
హరే
రామ హరే రామ 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 హరే హరే हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hari Bol.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hari Bol.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नितय गौरांग नितय गौरांग नितय गौरांग नितय गौरांग नितय गौरांग हरि हरि बोल नितय गौरांग गौर हरि बोल जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि बोल जय सचिनंदन गौर हरि बोल जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन नितय गौरांग नितय गौरांग गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।